गुरु भक्ति योग। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है वे शांति और आनंद स्वरूप है, वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ हैं। उनके लिए मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख सब समान है। वे काम क्रोध लोभ मद और मत्सर से मुक्त हैं। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्यों के संशय दूर कर सकते हैं। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन को संयम में लाने से काम वासना शांति हो सकती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको अमाप एवं अनहद आनंद देता है। गुरु भक्ति योग साधक को चिरायु और अनंत सुख देता है। गुरु पर भक्ति भाव सब हीन वृत्तियों और आवेगों को दबा देता है तथा सब अवरोधों को दूर करता है। गुरु भक्ति योग में गुरु के प्रति भक्ति भाव सबसे महान चीज है। गुरु भक्ति की महिमा बताते हुए पद्म पुराण के भूमि खंड में भगवान श्री विष्णु राजा वेन से कहते हैं, गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्यः प्रकाशकः गुरुः प्रकाशकस्त्वद्विन् शिष्याणां बुद्धिदानतः। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करता है, चंद्रमा रात में प्रकाशित होता है और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है, परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्यों के लिए गुरु ही उत्तम तीर्थ है। यह समझकर शिष्य को उचित है कि वह सब तरह से गुरु को प्रसन्न रखे। गुरु को पुण्यमय जानकर मन वाणी और शरीर तीनों की क्रियाओं से उनकी आराधना करता रहे। सद्गुरु के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शिष्य की दुर्गति होती है। मनु महाराज कहते हैं, परिवादात् खरो भवति श्वावै भवन्ति निंदकः, परिभोक्ता कुर्म भवति कीटो भवति मत्सरी। गुरु को झूठा दोष लगाने वाला गधा होता है, उनकी निंदा करने वाला निसंदेह कुत्ता होता है, अनुचित रीति से उनके धन को भोगने वाला कृमि होता है और उनके साथ डाह रखने वाला कीट होता है। अतएव इस प्रकार कभी भी गुरु के साथ बुरा बर्ताव न करें, बल्कि उनकी आज्ञा एवं संकेतों के अनुसार कार्य करें। गुरु की महिमा अवर्णनीय अकथनीय है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पिता और माता केवल शरीर को ही जन्म देते हैं, परंतु आचार्य का उपदेश प्राप्त करके जो द्वितीय जन्म उपलब्ध होता है वह दिव्य है, अजर अमर है। जो सत्य कर्म और यथार्थ उपदेश के द्वारा पुत्र या शिष्य को कवच की भांति ढक लेते हैं, सत्य स्वरूप वेद का उपदेश देते हैं और असत्य के मार्ग पर जाने से रोकते हैं, उन गुरु को ही पिता और माता समझे और उनके उपकार को जानकर कभी उनसे द्रोह न करे। जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर नहीं करते तथा निकट रहकर मन वाणी और क्रिया द्वारा गुरु की सेवा नहीं करते, उन्हें गर्भ के बालक की हत्या से भी बढ़कर पाप लगता है। संसार में उनसे बड़ा दूसरा पापी कोई नहीं। जैसे गुरुओं का कर्तव्य है शिष्य को आत्मोन्नति के पद पर आगे बढ़ाना, उसी तरह शिष्यों का धर्म है गुरुओं का पूजन करना। जिस कर्म से शिष्य गुरु को प्रसन्न करता है उसी के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न हो जाती है। अतः गुरु माता पिता से भी अधिक पूजनीय है। गुरुओं के पूजित होने पर पितरों सहित देवता और ऋषि भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए गुरु परम पूजनीय है। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपह क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। सद्गुरु के उपदेशों को सुनकर उन्हें आचरण में लाए बिना विषयों का त्याग हो पाना कठिन है और तत्वदर्शन करना भी दुर्लभ है। साधक को ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में पहुंचकर उनको साष्टांग दंडवत तथा करबद्ध प्रणाम कर अति विनयी हो सद उपदेश के लिए प्रार्थना करने चाहिए। जिज्ञासु साधकों के पथ प्रदर्शनार्थ सद्गुरु के रूप में भगवान स्वयं पधारते हैं। ईश्वर कृपा ही गुरु के रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि सद्गुरु दर्शन को भगवत दर्शन की संज्ञा दी जाती है। सद्गुरु भगवत स्वरूप होते हैं, उनकी उपस्थिति सबको पवित्र करती है।